नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं कनकलता। अमेरिका और इसराइल गजा संघर्ष समाप्त करने के लिए एक शांति योजना पर सहमत हुए। भारत ने शांति पहल का स्वागत किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच संबंधों के पुनर्निर्माण पर बातचीत हुई। कनाडा ने अपराध संहिता के अंतर्गत बिश्नोई गिरोह को आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया। और आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप आज मेजबान भारत तथा श्रीलंका के बीच मुकाबले के साथ शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई बैठक के बाद दो वर्ष पुराना गजा संघर्ष समाप्त करने के लिए एक शांति योजना जारी की गई है। इस शांति योजना के अंतर्गत गजा एक गैर कट्टरपंथी आतंक मुक्त क्षेत्र होगा और अपने पड़ोसियों के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करेगा। गजा के लोगों के लाभ के लिए इसका पुनर्विकास किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
शांति योजना के अनुसार दोनों पक्षों के इस प्रस्ताव पर सहमत होने पर युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा। इस दौरान सभी सैन्य अभियान स्थगित रहेंगे। शांति योजना के अनुसार इसराइल के इस समझौते को स्वीकार करने के 72 घंटों में सभी बंदूकों को वापस कर दिया जाएगा। गजा छोड़ने वाले हमास के सदस्यों को सुरक्षित मार्ग प्रदान किया जाएगा। इस समझौते के स्वीकृत होने पर गजा पट्टी में तुरंत पूरी सहायता भेजी जाएगी। अरब और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर अमरीका एक अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल विकसित करेगा, जिसे तुरंत गजा में तैनात किया जाएगा। शांति योजना के अनुसार अमेरिका इसराइल और फिलिस्तीन के बीच एक संवाद स्थापित करेगा ताकि शांतिपूर्ण और समृद्ध सह अस्तित्व के लिए सहमति बन सके। विश्व दर्पण के लिए मैं रवि कपूर।
इस बीच भारत ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गजा संघर्ष समाप्त करने की व्यापक योजना की घोषणा का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह योजना फलस्तीन और इसराइल के लोगों के साथ साथ व्यापक पश्चिम एशियाई क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक और स्थायी शांति, सुरक्षा और विकास का एक व्यवहार मार्ग प्रदान करती है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि सभी हितधारक राष्ट्रपति ट्रंप की पहल के पीछे एकजुट होंगे और संघर्ष समाप्त करने तथा शांति सुनिश्चित करने के इस प्रयास का समर्थन करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। ये मुलाकात दोनों देशों के बीच संबंधों के पुनर्निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डॉ जयशंकर ने हाल ही में उच्चायुक्तों की नियुक्ति का स्वागत करते हुए इसे राजनयिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में स्वागत योग्य कदम बताया था। ये मुलाकात 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में डॉ जयशंकर की उच्चस्तरीय बैठकों का हिस्सा है, जहां वे बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भाग ले रहे हैं। डॉ जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान के साथ भी बैठक की थी। भारत और भूटान 4,033 करोड़ रुपए की कुल लागत से सीमा पार दो रेल संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसमें कोकराझार गेलेफू और बानरहाट सामतसी परियोजनाएं शामिल हैं। नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इन रेल परियोजनाओं में पूरा निवेश भारत द्वारा किया जाएगा।
इंडिया इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ भूटान।
भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भूटान का अधिकांश व्यापार भारतीय बंदरगाहों के माध्यम से होता है, इसलिए भूटानी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए और लोगों के लिए वैश्विक नेटवर्क तक पहुंच के बेहतर तरीके के लिए एक अच्छी और निर्बाध रेलवे कनेक्टिविटी होना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए यह पूरी परियोजना शुरू की गई है।
विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने भूटान के विदेश सचिव ओम पेमा चोडेन के साथ विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी संबंधों के संपूर्ण आयाम की समीक्षा की और सहयोग के सभी प्रमुख क्षेत्रों में हुई प्रगति पर बातचीत की। इस दौरान भारत और भूटान के बीच रेलवे संपर्क स्थापित करने के लिए एक अंतर सरकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
दोनों सरकारों के बीच बहुत ही विशेष संबंध हैं। इन संबंधों के अंतर्गत बानरघाट सोमसाय और कोकराझार काफिलों के बीच सीमा पार रेल संपर्क स्थापित करने की योजना बनाई गई है। ये भूटान के साथ होने वाले पहले रेल संपर्क परियोजना का सेट होगा। इस संपर्क के लिए समझौता ज्ञापन पिछले वर्ष प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए।
ड्यूरिंग द विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू भूटान दैट आई मेंशनड शॉर्ट व्हाइल अगो लास्ट ईयर।
मूडीज रेटिंग्स ने भारत की दीर्घकालिक स्थानीय और विदेशी मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को Baa3 पर बरकरार रखा है। मूडीज ने इस फैसले का आधार भारत की राजकोषीय घाटे में कमी और मजबूत विकास संभावनाओं को बताया है। ये भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि को दर्शाता है। मूडीज ने कहा कि भारत एक सुरक्षित निवेश गंतव्य बना हुआ है। उसका अनुमान है कि अमरीकी शुल्क और नीतिगत बदलावों का निकट भविष्य में भारत की अर्थव्यवस्था पर सीमित प्रभाव पड़ेगा। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। कनाडा ने आपराधिक संहिता के अंतर्गत बिश्नोई गिरोह को आतंकी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया है। इसके अनुसार कनाडा में इस समूह की कोई भी संपत्ति जब्त की जा सकती है। कनाडा के जन सुरक्षा मंत्री गैरी आनंद सांगरी ने कहा कि बिश्नोई गिरोह ने विशिष्ट समुदायों को आतंक, हिंसा और धमकी के लिए निशाना बनाया है। वहां की सरकार ने कहा है कि बिश्नोई गिरोह कनाडा में बड़ी संख्या में प्रवासी समुदायों के क्षेत्रों में सक्रिय है। ये गिरोह हत्या, गोलीबारी और आगजनी में शामिल है और जबरन वसूली तथा धमकी के माध्यम से आतंक फैलाता है। भारतीय उच्चायोग ने लंदन के टेविस्टॉक स्क्वायर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर हुई तोड़फोड़ की कड़ी निंदा की है। भारतीय उच्चायोग ने कहा कि उसने स्थानीय अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी है और इसके अधिकारी स्मारक को उसकी मूल स्थिति में लाने के लिए घटनास्थल पर मौजूद हैं। मेट्रोपॉलिटन पुलिस और स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि वे तोड़फोड़ की जांच कर रहे हैं। इसराइल में भारतीय दूतावास ने हाइफा युद्ध की 107वीं वर्षगांठ के अवसर पर वर्ष 1918 में हाइफा को स्वतंत्र कराने वाले तत्कालीन जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद लांसर्स के भारतीय सैनिकों के साहस और वीरता को सम्मानित किया। समारोह में भारत के राजदूत जेपी सिंह, हाइफा के महापौर योना वहाव और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बोत्सवाना स्वतंत्रता दिवस पर वहां की सरकार और लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। चक्रवाती तूफान बुआलोई ने वियतनाम में भीषण तबाही मचाई है। इसमें 13 लोगों की मौत हो गई है। वियतनाम के मौसम विभाग के अनुसार 17 लोग लापता हैं और 46 घायल हैं। तूफान बुआलोई कल वियतनाम के उत्तरी मध्य तट से होते हुए गुजरा, जिस दौरान 8 मीटर ऊंची लहरें दर्ज की गई। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं शक्ति सिंह।
ICC महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2025 आज मेजबान भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। ये मैच दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिताब के 47 साल के इंतजार को खत्म करना चाहेगी। 2025 महिला विश्व कप 50 ओवर के क्रिकेट टूर्नामेंट का 13वां संस्करण है, जिसमें 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये टीमें भारत में 4 और कोलंबो में 1 स्थान पर राउंड रॉबिन प्रारूप में 28 लीग मैच में प्रतिस्पर्धा करेंगी। द्वंद्वी भारत और पाकिस्तान के बीच बहुप्रतीक्षित मैच 5 अक्टूबर को कोलंबो में खेला जाएगा। मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया 7 खिताबों के साथ महिला विश्व कप इतिहास की सबसे सफल टीम है। उधर इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर क्रिस वोक्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वोक्स ने खेल के सभी प्रारूपों में इंग्लैंड के लिए 217 मैच खेले हैं, जिसमें 3,705 रन बनाए और कुल 396 विकेट हासिल किए हैं। कबड्डी के मैदान में प्रो कबड्डी लीग में आज रात 8 बजे तेलुगु टाइटंस का मुकाबला पटना पायरेट्स से होगा। रात 9 बजे बंगाल वॉरियर्स और पुनेरी पल्टन के बीच मैच खेला जाएगा। दोनों मैच चेन्नई के SDAT मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम में खेले जाएंगे। वहीं कल खेले गए मुकाबलों में दबंग दिल्ली केसी ने हरियाणा स्टीलर्स को 38-37 से हरा दिया। एक अन्य मुकाबले में गुजरात जायंट्स ने यूपी योद्धास को 33-27 से हरा दिया।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और इसराइल गजा संघर्ष समाप्त करने के लिए एक शांति योजना पर सहमत हुए। भारत ने शांति पहल का स्वागत किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच संबंधों के पुनर्निर्माण पर बातचीत हुई। कनाडा ने अपराध संहिता के अंतर्गत बिश्नोई गिरोह को आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया। और ICC महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप आज मेजबान भारत तथा श्रीलंका के बीच मुकाबले के साथ शुरू होगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।